सो हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 की प्रयास संख्या 39 से 42 चर्चा करेंगे। सो पहले दो तीन प्रयास जो है मैं दोहराऊंगा, उसके बाद हम 42 जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो फिर हम दोहरा सकते हैं मिलके, है ना। कलारपात उपरे थुइल और फूल हरिद्रा सिंदूरा रक्त चंदन तंडूल। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी थी जिसमें और फूल हल्दी सिंदूर लाल चंदन का लेप तथा चावल थे। मध्य भान पाशे धरी निज घरे गेला प्रातः काल शिवास तहात देखिला। इस सामग्री के पास उसने एक शराब का घड़ा रख दिया था। प्रातःकाल जब शिवास ठाकुर ने अपना दरवाजा खोला तो उन्हें यह सारी सामग्री दिखाई दी। बड़ बड़ लोग सब आने ल बोलाया सवारे कहे शिवास हासिया हासिया। शिवास ठाकुर ने पड़ोस के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हंसते उनसे इस प्रकार कहा। सब श्लोक संख्या 42 है जो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नित्य रात्रे करियामि भवानी पूजन आमर महिमा दे ब्राह्मण सज्जन। नित्य रात्रे करियामि भवानी पूजन महिमा दे ब्राह्मण सज्जन। नित्य रात्रे करियामि भवानी पूजन आमर महिमा दे ब्राह्मण सज्जन। नित्य रात्रे हर रात को करी मैं करता हूँ आमी मैं भवानी पूजन। शिव की पत्नी भवानी की पूजा आमार
मेरी
महिमा
महिमा
देख आप देखते हैं ब्राह्मण सच्चा सभी पूज्य ब्राह्मण। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की सो अनुवाद इस प्रकार है। हे महाशयो मैं हर रात देवी भवानी की पूजा करता हूँ। चूंकि पूजा की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित है अतः समस्त आदरणीय ब्राह्मणों तथा उच्च जाति के सदस्यों आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। वैदिक पद्धति के अनुसार चार जातियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र और इनके नीचे भी होते हैं पंचम अर्थात पांचवी श्रेणी के लोग जो शूद्रों से भी निम्न होते हैं। उच्च जाति वाले ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य भी ब्राह्मण सज्जन कहलाते थे। ब्राह्मण विशेषकर सज्जन कहलाते थे क्योंकि ये सारे समाज का मार्गदर्शन करते थे। यदि गांव में कोई झगड़ा होता तो लोग निपटारे के लिए इन्हीं सम्मानित ब्राह्मणों के पास जाते थे। अब इस तरह के ब्राह्मण तथा सज्जन खोज पाना कठिन है अतः हर गांव तथा हर नगर इतना बिगड़ चुका है कि शांति तथा सुख का नामो निशान भी नहीं रहा। पूर्णतः सुसंस्कृत सभ्यता के पुनर्जागरण के लिए सारे विश्व में समाज के वैज्ञानिक विभाजन अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को लागू करना चाहिए। जब तक कुछ लोगों को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तब तक मानव समाज में शांति नहीं आ सकती। आज अनुलंबित भुजो कनका वदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सभावितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोछंदो तमोनदो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो जीता मित्र प्रभु मोहन रूपा प्रभु महामंत्र प्रभु और भी इतने सीनियर वैष्णवों के सामने कुछ बोलने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। ऋषि कुमार प्रभु आप सब वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो ये आदि लीला का आखिरी अध्याय है और इसमें अगर हम पीछे देखें तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ह्यूमिलिटी की बात कर रहे थे। तृण अपेक्षा हीन अपने को मानिए तिनके से भी अपने को नीच मानिए वृक्ष की अपेक्षा सहिष्णु बनिए। और ये बात करते करते उन्होंने श्रीवास ठाकुर का ये प्रसंग लेके आए। ये प्रसंग चैतन्य भागवत में नहीं है ये प्रसंग चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रोज शिवास आंगन में जो है पूरी रात कीर्तन करते थे नृत्य करते थे। और जो विजातीय हैं जो कृष्ण भक्त नहीं है और कृष्ण भक्त भी अगर सही बुद्धि में नहीं है उनको प्रवेश नहीं देते थे द्वार बंद कर देते थे। अगर कोई तपस्वी भी है तो उसको भी प्रवेश नहीं करने देते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करे तो उसके मन में गर्व आ जाता है कि मैं तो बहुत तपस्वी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया एक सिर्फ दूध पीने वाले ब्राह्मण के प्रसंग के द्वारा। एक ब्राह्मण था वो सिर्फ दूध ही पिया था उसने पूरा जीवन। तो उसको बहुत अभिमान था मन में कि मैंने तो सिर्फ दूध ही पिया तो वो प्रवेश करना चाह रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगाओ इस दूध पीने वाले ब्राह्मण को उसकी कोई जगह नहीं है।
इस तपस्या इत्यादि सारे गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो मूल है, अगर मूल गुण अगर नहीं होगा, अगर मूल गुण दीनता का, विनम्रता का अगर गुण नहीं होगा, तो बाकी सारे गुण ऐसे लगेंगे जैसे शरीर में कोड़ के निशान है, अच्छे नहीं लगेंगे। आभूषण है लेकिन देखने से डर लगेगा। जैसे प्रभुपाद, जो पहले प्रभुपाद ने बहुत लेख लिखे इस्कॉन की स्थापना से भी पहले, तो प्रभुपाद में एक लेख में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी। तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई मृतक शरीर है उसको कितना ही श्रृंगार कर लो लेकिन उसको देखने से डर लगेगा, उसको देखने से कुछ उसमें उसके प्रति प्रेम भाव जागृत नहीं होगा। सो वो जो गुण है जिसके कारण बाकी सारे गुण, सारे गुणों को शक्ति मिलती है, सारे गुणों को जीवन मिल रहा है, वो गुण विनम्रता का गुण है। अगर विनम्रता का गुण नहीं है, बाकी सारे गुण का कुछ मूल्य नहीं है, बेकार है। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं अमानित्वम अदम्भित्वम, कि बहुत दयालुता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो समझ में कैसे आएगा, कैसे समझें कि दीनता का माने क्या है, दीनता का अर्थ क्या है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतारें। अगर कोई उदाहरण नहीं होगा तो ये केवल एक किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हुए, कृष्णा एक भक्त के रूप में स्वयं अवतरित हुए अपने भक्तों के साथ ये दिखाने के लिए। और उन्होंने शिवास ठाकुर के द्वारा और अपने अनेक भक्तों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु इस बात को दिखा रहे हैं कि दीनता कितनी महत्वपूर्ण है। दीनता का मतलब ये नहीं है कि अगर हम गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार कर लो, वो तो एक मनुष्यता है, मानवता है वो, कि हाँ चलो ये एक रीजनेबल आदमी है। दीनता का मतलब है कि, और दीनता का मतलब ये भी नहीं है कि ये सोचना कि मैं हूं तो बहुत महान लेकिन अपने आप को नीच बोल लेता बोलना अच्छा है, वो भी दीनता नहीं है। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हैते मुई से लघिष्ट, तो वो ये नहीं कह रहे कि वो मल का कीड़ा कहाँ, मैं कहाँ, लेकिन देखो कितना दीन हूं मैं। वो वास्तव में ये सोच ही रहे हैं, वो वास्तव में ये सोच रहे हैं कि एक मल के कीड़े में गुण है कि वो मल को खाद में बदल सकता है। जो मल का कीड़ा है वो मल में रहता है, मल खाता है, उसको खाद में बदल देता है, मुझ में ये गुण भी नहीं है तो कौन श्रेष्ठ हुआ। तो मल का कीड़ा श्रेष्ठ हुआ, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं मल के कीड़े से भी गया गुजरा हूं। तो शिवास ठाकुर ने बुलाया आसपास के सारे सम्मानित लोगों को और उनको बोला देखो मैं भवानी की पूजा कर रहा हूं। तो गोपाल चापल नामक जो ब्राह्मण था, भट्टाचार्य शाक्त, उसने वो सारी सामग्री रखी थी, मदरा इत्यादि। तो शिवास ठाकुर ने ये कहने की कोशिश नहीं की, जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की कि नहीं नहीं देखो आपको तो पता है मेरे बारे में, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। हम आखिर अपने आप को डिफेंड क्यों करें? हम अगर अपने आप को डिफेंड, अपनी अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे भी तो कितना कर लेंगे। हमें इस बात में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, कि अगर कृष्ण चाहते हैं कि मेरा बाल भी बांका नहीं हो तो नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को देख लो, उनको जहरीले सांपों से डसवा दिया, नीचे गिरवा दिया, पहाड़ों से हाथी के पैरों तले दबवा दिया, शरीर पे पत्थर बांध के समुद्र में गिरा दिया, बाल भी बांका नहीं हुआ। क्योंकि पत्थर में वजन कृष्ण की शक्ति से है, सुई में तीर में जो चुभन है वो कृष्ण की शक्ति से है, जहर में मारने की शक्ति कृष्ण की शक्ति से है। अगर कृष्ण चाहेंगे तो वो जहर अमृत बन जाएगा, वो पत्थर जो है वो फूल की तरह एकदम कोमल और हल्का हो जाएगा। हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, और अगर कृष्ण चाहते हैं कि इसका मर जाना ठीक है तो कौन माइका लाल है जो बचा सकता है, किसी में ताकत नहीं है। ये भगवान पर पूर्ण निष्ठा का एक प्रतीक है, इससे देखा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, कृष्ण अपने आप देखेंगे। इसका मतलब है कि अपना बचाव नहीं करना, जस्टिफाई नहीं करना, ये सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, संस्था हो, 90% प्रॉब्लम सही गलत की वजह से ही है। अच्छा भला जीवन चल रहा था, वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल लेके आ गए कि स्त्री पुरुष समान है, वो समान है लेकिन आत्मा के स्तर पे समान है। अगर कोई जीव ये बोले कि मैं स्त्री हूं और मेरे पुरुष के समान अधिकार है, तो वो तो पहले से देहात्म बुद्धि में है, तो कहां से इक्वालिटी की बात करेंगे। अगर पुरुष बोले कि मैं बच्चा पैदा करना चाहता हूं क्योंकि स्त्री पुरुष समान है, तो नहीं कर सकता। नाइन्टी परसेंट प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं अगर भक्त आपस में और परिवार में, स्पेशली जो पति पत्नी हैं, अगर सही गलत के फैसले को छोड़कर अगर एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करें और अपने और ये सोचें कि अगर सुधार की गुंजाइश है तो मुझ में है, उसमें नहीं है। और वैसे भी अगर किसी को सुधारने के लिए परिश्रम करना है तो दूसरे को सुधारने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अपने को तो सुधारने में कितना टाइम लगेगा, संकल्प किया बात खत्म नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यसनी है, कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ उसमें खराबी है, उसको क्या करना है, सिर्फ ये सोचना है ना आज से नहीं करूँगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे को समझाना, अरे भैया छोड़ दे, मत कर ऐसा, हाँ हाँ सोचता हूँ, देखता हूँ, तुम्हें क्या पता इसमें कितना फायदा है, तो दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि मैंने पूरी दुनिया को बदलने की बहुत कोशिश की, फिर मुझे समझ में आ गई मैंने अपने आप को बदल लिया। अपने आप को बदलना बहुत आसान है ना। सो शिवाज ठाकुर यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, है ना। एक सेम उदाहरण हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो उनके गुरु के गुरु भाई रामचंद्रपुरी वहाँ पर आए, और रामचंद्रपुरी को उनके गुरु ने रिजेक्ट भी कर दिया था, माधवेंद्रपुरी ने रिजेक्ट कर दिया था रामचंद्रपुरी को, और बोल रहे थे कि एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ कि कृष्ण प्रेम नहीं मिला, पूरा जीवन वेस्ट हो गया, ऊपर से ये कहाँ से आ गया, मुझे कह रहा है कि ब्रह्म में ध्यान लगाओ, भगाओ इसको यहाँ से। तो गुरु ने रिजेक्ट भी कर दिया, फिर भी क्योंकि संन्यास धारण किया हुआ था, क्योंकि उनके गुरु के गुरु भाई हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा उनको पूरा सम्मान दिया। और क्योंकि गुरु ने रिजेक्ट किया था तो उनके अंदर सारे अवगुण उनके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो गए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में ही कमी निकालने शुरू कर दी। चैतन्य महाप्रभु को ही बोल रहे हैं कि देखो चींटियां घूम रही हैं, तुम मिठाई खा रहे हो, तुम्हारा अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, ये सन्यासी का धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओके। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रसाद ग्रहण करते थे उसको आधा कर दिया, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी कि चलो एक नुक्स निकाला और बोला कि चलो देखो तुम्हारे में एक कमी है, वो कमी हटा दी, प्रसाद लेना कम कर दिया। सारे भक्त परेशान हो गए, पूरा जगन्नाथपुरी में मातम छा गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर तुमने मुझे मजबूर किया पूरा प्रसाद लेने के लिए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, दोबारा कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन रामचंद्रपुरी यहां पर संतुष्ट नहीं हुए, वो दोबारा गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनको बोला तुम कुछ खा ही नहीं रहे, ये क्या शुष्क वैराग्य फैला रखा है। मतलब पंजाबी में एक कहावत है कि आटा गूंध रही है हिल क्यों रही है। अरे भैया क्या करें, बोला तुमने कि मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मैंने कम खाना शुरू कर दिया, अब तुम कह रहे हो कम क्यों खा रहे हो, कितने दुबले पतले हो गए हो, ये शुष्क वैराग्य छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओके। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कुछ लड़ाई की क्या? चैतन्य महाप्रभु ने क्या उनको ये बोला कि मैं तो आप ही की बात को फॉलो कर रहा हूं? चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं अज्ञ बालक हूं, मैं अबोध हूं, इग्नोरेंट हूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, आप परम दयालु हैं, आप मेरे सुहृदय हैं, आपने इतना प्रयास किया है मुझे सुधारने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। चैतन्य महाप्रभु कहने को कह भी सकते थे कि देखो क्लियर बताओ क्या करना है, खाना है नहीं खाना, कितना खाना है, क्लियर बता दो, है ना। उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, है ना। बोलते तो हो सकता है 1% विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती, कुछ विवाद नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आर्गुमेंट होगा, विवाद होगा, तो हमारी पूरी चेतना, हमारी पूरी एनर्जी उस विवाद में, उस घटना में घुस जाएगी। हमारा लक्ष्य अपने आप को श्रेष्ठ भक्त या सही सिद्ध करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कीर्तनीय सदाहरी। और कीर्तनीय सदाहरी का मतलब है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो प्रतिकूल है, अगर तर्क करना भक्ति के प्रतिकूल है, अगर हमें हरि स्मरण में, कृष्ण स्मरण में बाधा पहुंचा रहा है, मत करो। जीवा गोस्वामी ने प्रयास किया सही सिद्ध करने के लिए, अपने आप को नहीं, अपने गुरु को सिद्ध करने का प्रयास किया। जब दिग्विजय पंडित गया रूपा गोस्वामी के पास, बोला शास्त्रार्थ करो, तो रूपा गोस्वामी ने बोला क्यों? बोला इससे सिद्ध होगा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो रूपा गोस्वामी ने बोला इसमें सिद्ध करने की जरूरत क्या है, क्लियर है। तो क्या क्लियर है? आप श्रेष्ठ हो, अच्छा ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अभी तुम कह रहे हो बाद में पलट जाओ, तो जरा लिख के दे दो। लिख के दे दिया। जीवा गोस्वामी से बर्दाश्त नहीं हुआ, शास्त्रार्थ किया। उन्होंने वल्लभाचार्य से भी शास्त्रार्थ किया, उनको भी समझाया कि देखो जो रूपा गोस्वामी ने श्लोक लिखा है वो श्लोक आप जो समझ रहे हो वो सही नहीं है, वास्तव में जो मेरे गुरु ने लिखा है वो ठीक लिखा है। लेकिन क्या रूपा गोस्वामी इससे प्रसन्न हुए? रूपा गोस्वामी ने बोला कि तुमने एक क्षण भी क्यों वेस्ट कर दिया आर्गुमेंट करने में, वो क्षण उस टाइम में तुम कृष्ण भजन कर सकते थे, कृष्ण भजन को तुमने प्रधानता नहीं देके अपने आप को, अपने गुरु को सिद्ध करने, सही सिद्ध करने का प्रयास कर लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, भाग जाओ यहां से। एक एक क्षण कीमती है, कभी भी हम मर सकते हैं, और नहीं भी मरे तो भी ऐसा हो सकता है भक्ति से गिर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, हो सकता है दिमाग घूम जाए, भगवान का भजन करने की यहाँ क्षमता ना रहे या रुचि नहीं रहे। अभी है रुचि, अभी क्षमता है, अभी टाइम है, तो क्यों वेस्ट करें उसको? क्यों हम एक क्षण भी ये सिद्ध करने में लगाएं कि मैं सही हूं? कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्षण को भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान के भजन में लगा दो, और अगर भगवान चाहेंगे यश मिलेगा, भगवान नहीं चाहेंगे यश नहीं मिलेगा। हम कितना ही प्रयास कर लें, यश हमारे प्रयास से नहीं मिल रहा। कृष्ण को अगर लग रहा है कि इस भक्त को यश देने से ये औरों का भी भला करेगा और इसका खुद का भी भला होगा, तो कृष्ण देंगे। अगर यश दे के हम उसको संभाल नहीं पाएंगे तो कृष्ण छीन भी लेंगे। तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें, अलग से प्रयास क्यों करें हम इसके लिए? सो हम अगर एक एक जगह हम कहीं लेक्चर में बोल रहे थे कि जो स्त्रियां हैं उनको अगर अपने हस्बैंड की कुछ बात गलत भी लग रही है तो भी प्रतिरोध नहीं करना, माना चाहिए। कमोशन हो गया, लड़ाई शुरू हो गई वहां पर, क्या है कैसे दिया इसे? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपको क्या पता मैं कितना सहरी हूं? नहीं, मुझे बाद में कुछ भक्तों ने बोला भी कि क्या ये सही है आप ऐसे बोल रहे हो, लोगों को भगा दोगे आप, लोग आएंगे नहीं अगर आप ऐसी बातें करोगे तो। इसी तरह से अगर हम, और उसका प्रभाव कहां पड़ता है? ऐसा नहीं कि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गई तो उसका प्रभाव सिर्फ हस्बैंड और वाइफ पर ही पड़ेगा, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। कल मैं एक माताजी से मिला, उन्होंने बोला देखो मैं आपको पहले बता दूं मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड से बात बन नहीं रही है, वो 23 साल हो गए मुझे उनको झेलते हुए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दो बच्चे हैं, वो दोनों ना तो शादी करना चाहते हैं, मैंने बोला चलो वो तो अच्छी बात है शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो घर में भी नहीं रहना चाहते, वो बोल रहे हैं कि बेकार है ये घर, मतलब परिवार ये बिल्कुल बेकार संस्था है ये, मतलब शादी झगड़ों का घर है। तो लड़ाई हस्बैंड और वाइफ में हुई, अभी क्या पता कौन सही है कौन गलत है, हम तो वहां पर मौजूद नहीं थे 23 साल, और अगर होते भी तो क्या पता कि हम फैसला कर भी पाते नहीं कर पाते, है ना, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या बोल सकते हैं। तो हमने उनको बोला कि आप चलो अपने आप सही हो मान लिया, लेकिन हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस कर दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपस में लड़ाई करना छोड़ दो। बोले हाँ चलो सोचती हूँ। फिर मैं उसके हस्बैंड से मिला, कल ही की बात है, यहीं पे सारा ये ड्रामा हुआ। तो उसके हस्बैंड ने बोला देखो मुझे समझाने की कोशिश मत करना वही गलत है तो मैंने बोला हमने उनको समझा दिया वो गलत है, लेकिन वो अपनी गलती माने तो आप उसको ये मत बोलना ड्रामा कर रही है बस इतना ही सहयोग करना। तो जो बात घर में लागू है वो बात मंदिर में भी लागू है। अगर भक्तों का आपस में संबंध नहीं होगा, भक्तों के आपस में संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो ये मत समझना कि सिर्फ हम ही प्रभावित हो रहे हैं। जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं मंदिर में सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, भक्ति की तलाश में, एक सेकंड में भाप जाएंगे। जो भौतिक लोग हैं उनमें 1 करोड़ बुराइयां हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, समझ जाते हैं, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि तनाव है, लेकिन किसी को क्या पता, सब पता चल जाता है, एक बार नहीं पता चलेगा, हो सकता है मंगला आरती में पता ना चले, दर्शन आरती में पता चल जाएगा, हो सकता है सुबह नहीं पता चले, अगर वो सुबह से शाम तक मंदिर में रुकेंगे तो दिख जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। सो आप हम सब भक्तों को अगर हम बहुत लालायित हैं अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, तो भी अपने पे संयम लगाना चाहिए, और अपने लिए ना सही, जो बच्चे हैं, जो नए लोग भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, जो आ रहे हैं बहुत ही आशा के साथ, उनके लिए, गुरु के लिए भी नहीं। अगर गुरु की बात मानते तो हम सही सिद्ध करने का प्रयास ही नहीं करते पहले से, नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो दिखा दो। कैसे दिखाएं? आपस में कोऑपरेट करके। नहीं कर पा रहे कोऑपरेट, चलो नहीं कर पा रहे दूसरों के लिए, तो माँ बाप के लिए नहीं कर पाए, बच्चों के लिए तो कर लो। जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, उनको बुरा नहीं लगे, वो आपको देख के, आपके आपसी संबंध देख के भाग नहीं जाए, वो बोले कि यही देखने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है, वो तो घर में सब चालू ही है, नहीं स्पेशली इतनी दूर से 40 किलोमीटर चल के यहाँ पे क्यों आऊं, नहीं घर में पूरी पिक्चर चल रही है। तो ऐसा हमें भाव, ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि लोग आए और यहाँ पे आके सुख का, शांति का, भाईचारे का अनुभव करें। धोखा देने का प्रयास मत करो, ये मत सोचो कि मैं सही हूँ फिर भी सह रहा हूँ। अगर हम ये सोचेंगे तो ज़्यादा देर तक संयम नहीं रख पाएंगे। हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मुझे और अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप पे और काम करने की आवश्यकता है ना? अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखना कि भागवतम क्लास में ही पूरा नीचे सीढ़ियों तक लोग बैठ के, बाहर पूरा स्क्रीन लगाना पड़ेगा लोगों को, जो भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास सुनाने के लिए लोग उत्सुक हैं, लेकिन हमें देख के भाग जाते हैं। हमें देख के लोगों को आना चाहिए इधर, उनको उत्सुकता होनी चाहिए कि वहाँ जाके हमें बहुत अच्छे भक्तों का संग मिलेगा। मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जीता में प्रभु से, मोहन उपा प्रभु से, बलवत प्रभु, महामंत्र प्रभु, अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो सुझाव है उनके।
आज के जो तात्पर्य है बहुत गहरा है।